चर्चा करते हैं। अहिंसा, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। अब जो है वो श्रावक के तीन गुणगत और चार शिक्षा व्रतों की और चर्चा है। तो इसमें उसी को बता रहे हैं कि दस दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। जब श्रावक पांच अनुव्रतों को ले लेता है तो उसके बाद उन अनुव्रतों को की रक्षा के लिए या उन अनुव्रतों के बढ़ाने के लिए जो व्रत लिए जाते हैं वे गुणव्रत के हैं। तो उन गुणव्रतों में पहला है दिग्व्रत। दिग्व्रत का मतलब है दसों दिशाओं की एक सीमा कर लेना। उस सीमा के बाहर मैं अपना कोई व्यापार इत्यादि नहीं करूंगा जिसके माध्यम से कि पाप होता है, इसलिए मैं उस सीमा के बाहर के पाप से तो बच गया। अब सीमा के भीतर जो है पाप मेरे द्वारा होगा तो वो अहिंसानुव्रत की वजह से वो भी लिमिटेड हो गया है, और उसके बाहर तो बिल्कुल ही पूरी तरह से त्याग हो गया। तो ये कह रहे हैं कि दसों दिशाओं की सीमा या प्रमाण उसका निश्चित कर लेना, मर्यादा निश्चित कर लेना, उसके बाहर फिर नहीं जाना, कोई भी पापकारी उसके बाहर नहीं करना, यही दिग्व्रत है। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा गमनागमन प्रमाण ठान अन सकल निवास। फिर अब वो जो हमने बहुत बड़ी सीमा रख रखी है दसों दिशाओं की, उसमें भी हम लिमिटेशन करते हैं, वो टाइम पीरियड के लिए करते हैं, एक निश्चित समय के लिए। उसमें भी फिर अपने गांव से बाहर नहीं जाऊंगा, या अपनी गली, अपने मोहल्ले, या कि इस बगीचे से बाहर नहीं जाऊंगा, या इस बाजार से बाहर नहीं जाऊंगा। इस तरह जो आवागमन की सीमा है उसको भी निर्धारित कर लेना, इसका नाम देशव्रत कहलाता है। इसी को देशावकाशिक व्रत भी कहते हैं। ये दूसरा व्रत है। और तीसरा व्रत जो है अनर्थ दंड व्रत है। काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होए अगबनज प्रसिद्ध। अनर्थ दंड का मतलब ऐसा है कि पर्पज लेस सिन। अभी श्रावक को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाप तो करना पड़ता है, उसका उसे निषेध नहीं है, उसने उसकी भी लिमिटेशन कर ली है, लेकिन जो उसके लिए आवश्यक नहीं है ऐसा पाप क्यों करे। मुझे अपने श्रावक के लिए अपने भोजन के लिए जो अग्नि इत्यादि जलाना है और जो हिंसा करनी वो तो ठीक है, लेकिन अब भोजन तो चार लोगों के लायक चाहिए था और आप 40 के लायक बनाएंगे तो ये तो वेस्ट है। आपको पानी अपने नहाने धोने के लिए एक लोटा चाहिए था और आपने चार लोटे गिरा दिया, ये भी वेस्ट है। आप अपना जीवन तो ठीक से जी रहे हैं और बैठे बैठे दूसरे के बारे में हिसाब किताब बना रहे हैं, उसको उसके बारे में गलत सलत सोच रहे हैं, तो कहते हैं ये तो व्यर्थ है, आप व्यर्थ का पाप कर रहे हैं। तो व्यर्थ पाप, या कि व्यर्थ पाप न कह के अनर्थकारी पाप, अपने लिए भी उसका कोई उपयोग नहीं है इसलिए व्यर्थ है, लेकिन दूसरे के लिए अहितकारी है इसलिए वो अनर्थ है। ये दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। तो इसमें पांच प्रकार का होता है ये अनर्थ दंड। दंड मतलब होता मन वचन काय की पाप क्रिया। मन वचन काय की ऐसी पाप क्रिया जो दूसरे को घातक है वो कहलाती अनर्थ दंड। और अनर्थ दंड विरक्त मतलब मन वचन काय की अनर्थकारी क्रिया से विरक्त हो जाने का नाम अनर्थ दंड व्रत है। ये इसकी सामान्य सी परिभाषा है। इसमें इन्होंने और अलग अलग पांचों के क्रम से पांच प्रकार के अनर्थ दंड को डिफाइन किया है। काहू की धन हानि किसी है जय हार न चिंते। हम बैठे बैठे दूसरे के अहित के बारे में न सोचें, उसके जय और पराजय का विचार भी न करें, ये इसको जो है अपध्यान कहते हैं। अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है, इससे भी विरक्त होना चाहिए। फिर दे न सो उपदेश होए अगवनज ग्रसित है। अब हम स्वयं तो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं हिंसा का, लेकिन हम दूसरे को इस तरह का उपदेश दे रहे हैं, पाप का उपदेश दे रहे हैं, या कि उसको ऐसी विधि बता रहे हैं जिससे कि वो और अधिक हिंसा में लग जाए, और उसके साथ हम ये भी कह रहे हैं कि देखो मैंने तो इस तरह का त्याग कर दिया है लेकिन तुम तो कर सकते हो, तो ऐसा हम उसको उपदेश दे करके और प्रेरित करके और उससे हिंसा इत्यादि का काम करवा रहे हैं, चाहे वो कृषि हो चाहे और दूसरे भी
कार्य। यहाँ वो मेरे दिल में कई बार आया है क्योंकि आपने कई बार कहा प्रवचनों में भी कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें पुण्य पाप के आप खुद ही आपके फैमिली मेंबर कोई भी, तो जैसे महिलाएं खाना बनाती हैं उसमें बहुत हिंसा होती है, तो उससे जो थोड़ा बहुत भी पाप है तो लगेगा, थोड़ा तो लगेगा क्योंकि वो तो हिंसा तो हो रही है, तो गलती तो पूरी फैमिली के लिए है, उनका उद्देश्य तो पूरी फैमिली के लिए है, तो क्या फैमिली मेंबर्स को भी उसका कुछ हिस्सा?
फैमिली मेंबर्स उसका जितना समर्थन करेंगे उतना उनको लगेगा, वो भी समर्थन तो करते हैं क्योंकि उसे ग्रहण करते हैं। मैं अपने लिए मन वचन काय की शुद्धि बुलवा लेता हूँ फिर लेता हूँ, मैं इसलिए उस पाप से बच गया हूँ, लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं है। उस बनाने वाले पूरे से
मन वचन काय की शुद्धि बुलवा सकते हैं,
आप अगर इस तरह करेंगे तो आपके पास व्रत भी होना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति ने पाप नहीं करने का संकल्प कर लिया है और फिर कोई व्यक्ति अगर पाप करता है तो उस पाप को भी वो स्वीकृति नहीं दे रहा है, इसलिए बच पा रहा है, और जिसने अभी पाप का तो त्याग नहीं किया और दूसरे के लिए रोक रहा है तो रोक रहा है उतना ही उसको लाभ होगा, स्वयं तो उसने भी किया नहीं त्याग। इसलिए अगर आप ये चाहेंगे कि हमने तो अभी त्याग किया नहीं और आप कर रहे हैं तो हम आपका समर्थन भी नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा तो फिर भी ठीक है, लेकिन 100% आप इसमें सक्सेस नहीं होंगे। आप इतना ही समर्थन करें कि देखो भाई, चार लोगों के लायक भोजन बनाना उतनी बनाया करें, 10 लोगों का मत बनाया करें, इसका मैं समर्थन नहीं करता कि तुम इतना विस्तार लो और 10 लोगों के लायक, 4 की है तो 4 का तो मैं समर्थन करता हूँ कि अपन सबको जीवना है तो उतना बनाओ, तो उसका समर्थन कर रहे हैं तो उतना हमें भी उसका पाप लगेगा।
जो
देखिए वहां से कमा करके व्यक्ति ला रहा है तो घर के लोग जो है उसका समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें भी उतना जितना समर्थन किया है उस संपत्ति का उसका पाप लगेगा, इसी तरह घर कार्यों का भी हमारे भावों पर निर्भर करेगा। तो ऐसा कोई उपदेश जिसके द्वारा हिंसा होती है, पाप होता है, चाहे वो व्यापार हो या खेती वगैरह हो, उसका उपदेश नहीं देगा, ये उसके पापोपदेश अनर्थ दंड से विरक्ति कहलाएगी। और फिर कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, और प्रमाद वश मतलब उसको क्या कहते हैं, असावधानी पूर्वक, असावधानी या कि बिना प्रयोजन के जल कायक जल भूमि वृक्ष वनस्पति कायक पावक मतलब अग्नि कायक इन और वायु कायक इन सब जीवों के लिए वो व्यर्थ जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है, असावधानी पूर्वक भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाया अगर, तो ये जो है प्रमाद चर्या नाम का अनर्थ दंड कहलाता। राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजिए, और जिससे राग द्वेष बढ़ता है ऐसी कथा दूसरे के पास बैठ करके दूसरे की निंदा प्रशंसा वाली कथा नहीं सुनना, यही जो है दुश्रुति कहलाती। मैं तो इसको ये मानता हूँ कि गांधी के 3 मंदिर वाला मामला है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, वही इसमें आ
गया।
अच्छा, 80 धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यस लाधे, और ऐसी चीजें, 80 मतलब तलवार और धनु मतलब धनुष, हल मतलब हल होता ही है, ये सब हिंसा के उपकरण हैं, इन उपकरणों को या पदार्थों को दे करके अपने लिए शाबाशी नहीं लेगा, यश नहीं लेगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसके माध्यम से हिंसा करेगा, ये हिंसा दान कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हिंसात्मक होती हैं, जिनके देने से व्यक्ति हिंसा कर सकता है। इसमें ये भी आता है कि जैसे किसी पड़ोसी ने अपन से वो मांगी, दिया सलाई मांगी, तो पड़ोसी पर अगर हमारा विश्वास है तो हम दिया सलाई उसे देंगे, क्योंकि वो अपनी अग्नि जलाने के लिए ले रहा है, लेकिन अगर वो दूसरे के घर में आग जलाने के लिए ले उसका उपयोग कर ले तो फिर हम नहीं देंगे उसके लिए, हम विश्वास कर, प्रति व्यक्ति जिस भी ऊपर विश्वास है उसी को ये उपकरण देगा, अन्यथा नहीं देगा। और राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे, ये दुश्रुति कहलाती है, बैठ करके दूसरे की निंदा इत्यादि हम नहीं करेंगे, इससे व्यर्थ ही पाप होता है। और हूँ अनरत दंड हेतु अघ तिन्ह न कीजिए, और दूसरे का जिससे अन्न और भी जो पाप के कारण है उन सबको भी वो नहीं करता है, इस तरह से ये 5 अनर्थ दंड के भेद हैं। अनर्थ दंड का मतलब ये है कि बिना प्रयोजन के और पापकारी करना, बिना प्रयोजन के पापकारी से बचना, ये अनर्थ दंड विरति, ये एक गुण व्रत है। इस तरह से 3 गुण व्रत हो गए, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। इसके बाद श्रावक के लिए 4 शिक्षा व्रत कहे गए हैं, जिससे कि उसे महाव्रत या कि मुनि धर्म की शिक्षा मिलती है, गृहस्थ में रह करके भी वो अपने आत्मकल्याण के लिए और ऊंची स्थिति की शिक्षा ले सकता है। वो कैसे ले सकता है, तो सामायिक के द्वारा, तो सामायिक एक शिक्षा व्रत है, धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, एक ही लाइन में इन्होंने कह दिया। कि कुछ समय के लिए अर्थात तीनों संध्याओं में और समता भाव रखना, सुख दुख हर्ष में हर्ष विषाद नहीं करना, लाभ हानि में संक्लेश नहीं करना और समता परिणाम रखना उतनी देर के लिए, या कि पांचों पापों का त्याग करके पंच परमेष्ठी का स्मरण करना, ऐसा कह लीजिएगा। ये जो है सामायिक कहलाती है, इसको ये श्रावक के लिए शिक्षा व्रत की तरह है, वो तीन संध्याओं में इसका अभ्यास करे। पर्व चतुष्टय माही पाप तज प्रोसत धरिए, और पर्व और चतुष्टय माही चार पर्व होते हैं, दो अष्टमी दो चतुर्दशी, ऐसे एक माह में चार पर्व के दिनों में समस्त पाप क्रियाओं का त्याग कर देवे और प्रोसत अर्थात उपवास करे। एक ही मानी जाती है पहली वाली, जहाँ दो तिथियां हो जाएं, दो चतुर्दशी या दो अष्टमी हो जाएं, वहां पहली वाली को मान लिया जाता है।
महाराज जी, इसमें जो वृद्धों का वो दिया है कि एक दिन पहले एक आसन करना चाहिए,
हाँ, दूसरा वो भी एक प्रक्रिया है। प्रोषद का मतलब होता है एक बार भुक्ति, और उपवास का मतलब होता है चारों प्रकार के भोजन का। जिस उपवास के आगे पीछे एक एक बार भोजन किया जाए उसे भी प्रोषद उपवास कहते हैं, और प्रोषद का अर्थ पर्व भी होता है, तो पर्व के दिन में किया जाने वाला उपवास प्रोषद उपवास कहलाता। दोनों परिभाषाएं अपने यहाँ पर दी हुई, यही दोनों प्रोषद का अर्थ है एक बार भोजन, तो जिस उपवास के आगे पीछे एक एक बार भोजन किया जाए उसे प्रोषद उपवास कहते हैं, एक परिभाषा तो ये हो गई। इस तरह से हमें सप्तमी को एक आसन, अष्टमी को उपवास, नवमी को एक आसन करना चाहिए, 13, 14 स्वर्ग अमावस्या पूर्णिमा को भी इसी तरह का क्रम रखना चाहिए। दूसरा आचार्य महाराज का कहना है, उमा स्वामी आचार्य का, कि नहीं प्रोषद का मतलब होता पर्व, और पर्व तो चार ही होते हैं एक महीने में, इसलिए दो अष्टमी दो चतुर्दशी को उपवास करना ये प्रोषद उपवास, ये भी दिया हुआ, तो अपने को दोनों मानने हैं। यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि चार पर्व के दिनों में प्रोषद धरिए अर्थात उपवास करिएगा। भोग और उपभोग नियम करी ममत निवार, और भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनकी हम सीमा कर लें, उनका नियम कर लें कि इतने समय के लिए हम ग्रहण करेंगे, इतने समय के लिए हमने त्याग किया। भोग उपभोग की चीजें, भोग की चीज वो कहलाती भोजन इत्यादि जो एक बार हम उपयोग कर लेते हैं वह खत्म हो जाता, वस्त्र इत्यादि उपभोग की चीजें हैं जिनको बार बार हम उपयोग में लेते हैं तो वो उपभोग कहलाती, इनकी लिमिटेशन कर ली, क्योंकि इनके माध्यम से हिंसा होती है और हमने अणुव्रतों को ले रखा है तो हम शिक्षा व्रत लेकर के उनको और अधिक सूक्ष्म बनाते हैं। ये इस तरह से तीसरा शिक्षा व्रत है भोग भोग परिमाण नाम का, और चौथा शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग, मुनि को भोजन दे फिर निज करही आहार, अपने आहार में से समीचीन विभाग करना अतिथि के लिए और उसे अतिथि को दे करके फिर स्वयं ग्रहण करना, तो ये मुनि को भोजन दे से अर्थ है यहाँ पर अतिथि से लेना है। अब वो अतिथि उत्तम मध्यम और जघन ये तीनों प्रकार का हो सकता है, तो उत्तम तो मुनि महाराज को माना गया है, फिर जो देशव्रती हैं अनुव्रती हैं उनको मध्यम माना गया है, जघन सामान्य साधर्मी जन है वो माने गए हैं, तो इन सब के लिए पहले अतिथि को भोजन देंगे, अपने भोजन में से विभाग करता है वो सम विभाग, इसलिए अतिथि सम विभाग नाम का व्रत रखा गया। अतिथि के लिए भी देना है मुझे, उसमें से एक पार्ट उसका भी है,
तो संभव
रोज जो व्रत लेगा वो तो रोज इस तरह का की भावना तो भाएगा, इसका भावना तो भाएगा, अगर वहाँ कोई अतिथि नहीं है प्रयत्न तो वो करेगा, पर अतिथि नहीं है तो उनका सब अच्छे से हुआ हो या हो इस तरह की भावना भागे फिर अपना भोजन शुरू कर देगा, पर अतिथि की स्मरण किए बिना अपना भोजन भी शुरू नहीं करेगा क्योंकि वो व्रती है अतिथि संविभाग। इस तरह से ये 12 व्रत श्रावक के लिए कहे गए हैं। 12 व्रत के अतिचार पनपन न लगावे, मरण समय संन्यास धार पशु दोष न सावे। इन 12 व्रतों में जो अतिचार का मतलब होता है शिथिलता या दोष, तो पांच पांच हरेक के अतिचार हैं हरेक व्रत के, वो इसमें ना लगाएं और निर्दोष रूप से अपने व्रतों का पालन करें, और अंत समय में मरण के समय पर संन्यासधारी संन्यास कार्य यहाँ पर संलेखना है, समस्त चीजों का त्याग करके और शांतिपूर्वक अपने शरीर को छोड़ देना। तसु दोष नशावे, क्योंकि संलेखना से ही 12 व्रतों में जो दोष जीवन भर लगे हैं वे प्रमार्जित होते हैं। इनका कहना है कि जैसे एग्जामिनेशन होता है तो आपने कितनी स्टडी करी है ये आपके एग्जाम से क्लियर होगा, तो इसी तरह संलेखना इम्तहान है कि हमने 12 व्रतों को निर्दोष पालन किया है, कदाचित उसमें दोष लग भी गए हैं तो संलेखना के द्वारा उन दोषों का भी निराकरण हम कर लेते हैं, हो जाता है। यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलह उपजावे तय तय जय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जागवे। इस तरह से जो श्रावक के 12 व्रतों का पालन करते हैं वे देवायु का बंद करके कहाँ तक जाते हैं, 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, और 16वें स्वर्ग में जाकर के वहां से आकर के तय तय जय वहां से च्युत होकर के नर जन्म अर्थात पुनः मनुष्य होकर के और महाव्रतों को अंगीकार करके शिव जावे अर्थात मोक्ष को पा सकते हैं। श्रावक के लिए इतना शॉर्ट जो है ड्यूरेशन अपने संसार को काटने का है।
सिर्फ जाना ही पड़ेगा महाराज जी, ऐसा नहीं कि मनुष्य जन्म से दूसरा मनुष्य
संभव नहीं है। इस मनुष्य जीवन में अगर महाव्रत अंगीकार कर लिए तो डायरेक्ट जाने की क्षमता है, और अगर सिर्फ अनुव्रत अंगीकार की है तो फिर आपको एक जगह एक बार स्वर्ग जाना पड़ेगा, वहां से आके फिर महाव्रत, क्योंकि मुनि भय ये तो स्पष्ट आप मुनि इस जीवन में हो नहीं पाए हैं। तो कोई बात नहीं, आपने अनुव्रतों को पालन किया है, चलिए आप एक स्टॉपेज बीच में रुकिएगा, वहां से आकर के फिर हिम्मत जुटाइएगा, फिर मुनि बन करके मोक्ष जाइएगा। इससे ज्यादा वो उसी जीवन से जा सकता है, जा सकता है।
नहीं मेरा महाराज जी ऐसे पंचम काल में आप कहते हैं कि यहाँ से दुख
नहीं जाएगा,
कोई नहीं, यहाँ से दूसरे भव में जाके अपने जो कर्म भूमिया है उनमें वहाँ ले ले,
वहाँ कर्म भूमि में जाएगा तो सम्यक दर्शन से रहित जीव होगा तो जाएगा, नहीं तो सम्यक दर्शन से युक्त व्रती व्यक्ति होगा तो देव के अलावा कहीं नहीं जाएगा।
मतलब एक भव तो उसको और ज्यादा लगेगा,
ज्यादा लगेगा
चाहे महावृत्ति भी हो।
इस तरह से ये चौथी ढाल आपके पूरी हो, तो पांचवी ढाल कल कर लेंगे। ये पांचवी ढाल 12 अनुपेक्षा के बारे में बताएंगे। असल में चौथी ढाल के अंत में जो इन्होंने कहा था ना कि यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलह उपजावे तैते चय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जा। तो अब मुनि होने के लिए संसार से विरक्त होना आवश्यक है, और संसार से विरक्ति के लिए 12 भावनाओं का चिंतन अनिवार्य है। इसलिए जो है 12 भावनाओं का चिंतन मुनि बनने वाले और मुनि बन करके दोनों ही कंडीशन में होता है। इसलिए शायद चौथी ढाल के बाद मुनि धर्म का प्ररूपण करने से पहले और 12 भावना रखी हो। तो कह रहे हैं मुनि सकल व्रति बड़भागी भव भोगन ते वैरागी और वैराग उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा। मुनि जो है वो सकल व्रतों को धारण करने वाले और बड़भागी हैं, बड़भागी हैं मतलब सौभाग्यशाली हैं, वे भव के भोगों से विरक्त हो गए, उन्हें अब संसार के पंचेंद्री के भोगों की लालसा नहीं रही, यही उनकी विरक्ति है। हालांकि उनके लिए संसार के भोग विलास की सामग्री उपस्थित होती है लेकिन वे उसका उपभोग नहीं करते, और उससे बचते रहने के लिए वे वैराग उपावन माई जैसे कि माँ अपने बेटे का हमेशा हित करती है, इसी तरह से अनुप्रेक्षा भी माँ की तरह मुनि जनों के या मुनि बनने के लिए उत्सुक व्यक्ति के लिए हमेशा वैराग की तरफ ले जाती है, उसका हित साधती है। इसलिए वैराग उपावन माई वैराग को उत्पन्न करने वाली माता के समान, जैसे कि माता पुत्र को उत्पन्न करती है उसका हित चाहती है उसकी रक्षा करती है, इसी तरह से जो है वैराग किसी को अपने जीवन में उत्पन्न करना हो तो उसे माता की तरह मेरी भावना या 12 भावना का स्वरूप चिंतन करना पड़ेगा। अनुप्रेक्षा और भावना में ज्यादा अंतर नहीं है, अनुप्रेक्षा और भावना का अर्थ यही है कि निरंतर विचार की प्रक्रिया या कि विचार को समीचीन दिशा देने की प्रक्रिया, ये अनुप्रेक्षा कहलाता है, या कि जिसके द्वारा या जिस विचार के द्वारा हमें वास्तविकता का बोध हो उसे हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। अनुप्रेक्षा की एक परिभाषा दी है, अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन, जब हम जो चीज जानते हैं उसे जान करके अनुभव में लाने की कोशिश करते हैं तब तो वो जो विचार की प्रक्रिया है वो अनुप्रेक्षा कहलाती है। इतना अनुप्रेक्षा में विचार में अंतर है, सामान्य विचार और अनुप्रेक्षा में यही अंतर है। विचार की निरंतर प्रक्रिया है अनुप्रेक्षा, विचार की निरंतर प्रक्रिया और विचार को अनुभव बनाने की प्रक्रिया है, और अनुप्रेक्षा जो है वो सुझाव भी देती है हमें, जो हम संसार में चीजें देखते हैं उनको हम ठीक ठीक नहीं देख पाते हैं, अनुप्रेक्षा हमें उस समय एक अच्छा सुझाव देती कि इस चीज को ऐसा भी देखो। तो सजेशन देने के लिए भी अनुप्रेक्षा का उपयोग, अनुप्रेक्षा एक अच्छी सलाहकार है। अनुप्रेक्षा में जो चिंतन की बार बार प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है, हमारे भीतर उस विचार की एक स्पष्ट और गहरी छाप जो है वो पड़ जाती है, बहुत स्पष्ट और गहरी, दोनों चीजें एक साथ। असल में हमारे विचार को हम आचरण इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि वे विचार बहुत उथले होते हैं या कि वे विचार बहुत देर तक नहीं टिकने वाले होते हैं, अस्थायी होते हैं, उनको स्थायित्व देने वाली अनुप्रेक्षा है। तो इस तरह अनुप्रेक्षा जो है टेम्परिंग की प्रोसेस भी करती है, जैसे कि किसी चीज को ठंडा किया जाए, गर्म किया जाए, ठंडा किया जाए, एक सतत प्रक्रिया हो तो उसमें क्या होती है, रेजिस्टेंस आ जाती है, उसमें दृढ़ता आ जाती है। कोई भी चीज जैसे लोहा वगैरह टेम्परिंग करते हैं, या पानी को ही आप गर्म करिए फिर भाप बना के फिर ठंडा करिए फिर भाप बनाइएगा, इस प्रक्रिया में क्या होगा, माने केमिकल तो कोई चेंज नहीं होगा, वाटर में H2O फॉर्मूला है तो वो रहेगा, लेकिन क्वालिटेटिव चेंज हो जाएंगे। वो जो 100 दफे भाप बन के पानी बना है उस पानी में और सामान्य पानी में क्वालिटी में फर्क हो। इसी तरह से अनुप्रेक्षा करने वाले के अपने जीवन में क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, परमानेंट इंप्रेशन हो जाता है। तो फिर वो विचार जो है उसे विचलित नहीं कर पाता कोई उन विचारों के द्वारा, जो विचार उसका किसी चीज के बारे में बन जाता है। इस तरह इतने काम अनुप्रेक्षा करती है, हमारा भ्रम तो तोड़ती ही है, हमें सच्चाई से वाकिफ करवाती है। अनुप्रेक्षा जो है वो बाह्य जगत के परिचय के साथ साथ हमें अपने अंतरंग जगत का भी परिचय कराती है। और इतना ही मेरे ख्याल से अनुप्रेक्षा के बारे में पर्याप्त है। एक एक अनुप्रेक्षा को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। और अनुप्रेक्षा के बारे में एक दोहा और है कि इन चिंतत समसुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे। एक और विशेषता है कि जैसे हवा लगते ही अग्नि बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, इसी तरह इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने से हमारे भीतर सुख बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, वो जो आत्म सुख है। अभी तक हम भौतिक सुख को सुख मान रहे थे और उसके छिन जाने पर दुखी हो जाते थे, अब हमें आत्मिक सुख मिलना शुरू हो गया है तो हम भौतिक सुख के छिन जाने पर दुखी नहीं होते, यही हमारे सुखी होने का उपाय है। इस तरह से वो सुख हमारा सुख बड़ा नहीं है लेकिन दुख में हम नहीं गए हैं इसलिए सुख बढ़ गया, ऐसा अगर अपन चाहें तो मान सकते। जब ही जी आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। और जैसे कि वायु के चलने पर अग्नि एकदम भभक जाती है, ऐसे ही बारह भावनाओं के चिंतन करने से हमारे भीतर भी जो है शांति आती है। जैसे ही हम अपने आत्मा का विचार करते हैं तो हमारे आत्म तत्व के विचार के द्वारा हमें अपने आत्म तत्व की प्राप्ति, जो मोक्ष है, उसकी भी हमारे भीतर एक भावना पैदा होना शुरू हो जाती है। आपका ध्यान उस तरफ है। जोवन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिनथाई सुरधनु चपला चपलाई। ये पहली भावना है, हम विचार कर रहे हैं संसार में जो जो चीजें हैं उनके बारे में। इसमें बहुत मजा है, हम संसार में जो चीजें हैं उनका विचार करते हैं, हम संसार में जो हमारे संबंध हैं उनका विचार करते हैं, हम संसार का विचार करते हैं, संसार में अपनी पोजीशन और दूसरे की पोजीशन का विचार करते हैं, अपने शरीर का विचार करते हैं, निरंतर अपने होने वाले संस्कारों का विचार करते हैं और उन संस्कारों को कैसे रोका जाए इसका विचार करते हैं, संस्कारों को कैसे तोड़ा जाए इसका विचार करते हैं, पूरे यूनिवर्स का क्या सिस्टम है, क्या फंक्शन है इसका विचार करते हैं, और इस पूरे यूनिवर्स में मेरे लिए सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या चीज है उसका विचार करते हैं, और अंततः अपने आत्मा का क्या स्वभाव रूप धर्म है उसका विचार करते हैं। देखिएगा पूरी बारह भावनाएं आ गई। इतना ही विचार है, इन सब चीजों का विचार जिसमें समाया है वो बारह भावना है। हम सबसे पहले जगत की जितनी भी चीजें हैं उनका विचार कर रहे हैं, वो कैसी हैं, तो हमें दिखाई तो ये पड़ता है, हम देखते हैं कि ये सब फ्रैजाइल है, ये सब टूट फूट जाने वाली चीजें हैं, लेकिन हम उसमें भ्रम मान करके उन्हें शाश्वत करने की जिद करते हैं। और ये हमें अनुप्रेक्षा बताती है कि नहीं, इनको शाश्वत मत मानो। तो हम शाश्वत नहीं मानेंगे तो बड़ा बड़ा ऐसा लगता है कि फिर तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, बड़ी अनसर्टेनिटी लगती है। कहती नहीं, अगर हम इनको अशाश्वत मानेंगे तो हम बहुत स्टेबल हो जाएंगे। हमारी अस्थिरता का कारण है हमारा गलत कहना चाहिए सोच, तो हमारा सोच अगर ठीक हो जाए, हमें मालूम हो जाए कि भाई ये कागज है और जब तक फटा नहीं है तब तक ही है इसका लाइफ, इसकी जिस दिन भी फट जाएगा उस दिन ये बेकार हो जाएगा। कांच का ग्लास हम लेके आए हैं और ये मान के अगर कांच का ग्लास रखें कि कभी नहीं टूटेगा तो जिस दिन टूटेगा उस दिन तो दुख ही होने वाला, और ये मान के रखा हुआ है कि एक दिन तो टूट ही जाएगा, अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि कब टूटता है। जिस दिन टूटेगा उस दिन ठार से हंसूंगा, अरे वाह 10 दिन तक रहा आया, 11वें दिन टूटा, ये 10 दिन क्यों नहीं टूटा। अब इसकी खुशी अपने को मालूम नहीं पड़ती, वो बच्चों से सीखे अपन कि बच्चे फुग्गा लेके आते हैं, बहुत देर तक खेलते हैं, उसके बाद वो फट से फूट जाता, तो थोड़ी देर तो उनको लगता कि ये मामला क्या है, फिर खूब जोर से हंसते हैं वो, क्या ठीक है इसे फूटने का वो उतनी जल्दी से उस चीज को रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन हम उस चीज को अच्छे से रियलाइज नहीं कर पाते हैं। अनुपेक्षा हमें ये रियलाइज करवा रही कि जो वन ये हमारा जो यौवन है जो कि निरंतर वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, ग्रह जो हमने अपना घर बनाया है चाहे वो भीतर बनाया हो चाहे ईंट पत्थर से जोड़ के बनाया हो, हमने जो गाय गोधन अपने पास रख रखा है, हमने जो रुपया पैसा रख रखा है जिससे हमारे जिसने हम जिसको हमें अपना जीवन साथी मान के अपने साथ रखा है, उसकी भी लिमिटेशंस हैं, सबकी लिमिटेशंस। और हाय हाय मतलब होता है हाथी होगा शायद घोड़ा है, हाय मतलब घोड़ा ले लिया, और गए मतलब हाथी लिया, और जन मतलब हमारा जो परिजन है जो हम अपने कुटुंब के लोग मानते हैं, ये सब हमें लगता है कि हमारी आज्ञा में चलते हैं, लेकिन हमारी आज्ञा का तब मालूम पड़ता है जब ये हमारी आज्ञा लिए बिना टूट जाते हैं, जब ये हमारी आज्ञा लिए बिना हमसे छोड़ देते हैं। कोई भी पिता अपने बेटे से जिंदगी भर कह सकता है कि तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, लेकिन अगर वो मरण के निकट हो तो फिर नहीं कह सकता कि मेरी आज्ञा के बिना नहीं मर सकते मिस्टर आप, ऐसा नहीं कह सकता कोई भी। कोई अपने किसी व्यक्ति से नहीं कह सकता, कितने ही आज्ञाकारी क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, लेकिन वो व्यक्ति और वस्तु अपना समय पूरा करके नष्ट होते हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ ऐसा विचार करके सजग रह सकते हैं, गाफिल ना हो, उन सब की मृत्यु को देख करके दुखी ना हो, और अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहें, उसको हम डिनाइल नहीं करें, उस वास्तविकता से हम पलायन नहीं करें। ये हमें अनित अनुपेक्षा सिखाती है। अनित अनुप्रेक्षा सिर्फ मैं जो सोचता हूँ बहुत अच्छी चीज की, अनित अनुप्रेक्षा हमको चेतावनी देती है कि हमेशा जागते रहो, किसी भी क्षण हमारा मरण और जो चीजें हमने अपने आसपास रखी हैं उनका मरण हो सकता है, क्योंकि वे सब मरण धर्म हैं, एक ना एक दिन वे नष्ट हो जाने वाली हैं, इसलिए मौत से मत घबराओ, मौत से मुख मत मोड़ो, बल्कि उसका सामना। अकेला ये नहीं है कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के अथवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ठीक है सबको एक दिन अपनी अपनी बार मरना है ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें कौन सी बात है, नहीं उसमें मेरी भी बारी है, इस बात की मेरी तैयारी है कि नहीं है, ये अनुप्रेक्षा का सजेशन है। अनुप्रेक्षा सिर्फ इतना सा काम नहीं करती कि हमें बता देती कि सबको एक दिन मरना है, अनुप्रेक्षा ये कहती है कि एक दिन जब मर जाना है तो फिर हमारी तैयारी है या नहीं है, जो चीज डेफिनेट है जो चीज होने वाली है उसके बारे में हमारी क्या तैयारी है, चीजों को लेके चाहे हम अपने जीवन को, तो सब प्राइवेट है, यहाँ पर अनित्य है। इंद्रिय भोग छिन्नताई, जो इंद्रिय पांचों इंद्रियां हैं उनके जो भोग विलास की सामग्री है वो भी अपना समय पूरा करके नष्ट हो जाती, वो किसी वजह से नष्ट हो जाती ऐसा नहीं, वो बाई नेचर उसका नष्ट हो जाना उसकी मजबूरी है। अगर कोई हमारे कहना चाहिए हमारे जो हमने चीजें इकट्ठी कर रखी हैं और वे अगर ना, एक जगह लिखा हुआ है कि कांच की नजाकत इसमें है कि वो गिरे और टूट जाए, नहीं तो कांच का मतलब क्या, फिर वो तो पत्थर हुआ कांच ना हुआ, वो गिर करके ना टूटे तो ये जो है अनुपेक्षा नेचुरल प्रोसेस है, हम इस चीज को रियलाइज करें, किसी की हमसे शत्रुता नहीं है कि हमसे शत्रुता की वजह से ये हमसे चीज छिन गई है या कि टूट गई है, नहीं वो उसका नहीं। इंद्री भोग चिन्हताई सुरधनु चपला चपलाई, सुरधनु कहते हैं इंद्रधनुष, इंद्रधनुष बहुत थोड़ी देर के लिए आता है और नष्ट हो जाता है, बिजली भी क्षण भर के लिए चमकती है और फिर उसके बाद नष्ट हो जाती है, इतनी कहना चाहिए अनसर्टेन है लाइफ भी और जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है वो सब। तो हमें मैसेज क्या मिला इससे, अनित्यता का एहसास हमें जागृत करता है और सावधान कर देता है कि हम इसके लिए अपनी तैयारी कर लें, इससे पहले कि चीजें नष्ट हों हम अपने को उनके नष्ट होने के लिए तैयार कर लें, वरना जब वे नष्ट होंगी तो हमें पीड़ा दे करके जाएंगे। इस तरह अनित अनुप्रेक्षा अच्छा सजेशन दे रही। सुर असुर खगादिप जेते मृग ज्यो हरि काल दलेते मणिमंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचाए। सुर मतलब इंद्र, असुर मतलब जो अन्य भवनवासी इत्यादि देवी देवता हैं, खगादिप आकाश में उड़ने वाले और भी लोग हैं, जितने भी हैं वे सब मृग ज्यों हरि काल दले दलेते। जैसे कि एक सिंह से हिरण तब तक बचा है जब तक कि उसके सामने नहीं आया है, तो जिस दिन भी हिरण के सामने शेर आ जाएगा उस दिन तो खत्म होने वाला। तो हम ये सब जो जितने भी सुर असुर इत्यादि जो देखने में आते हैं मनुष्य, वे सब कब तक बचे हैं? जब तक उनके सामने काल नहीं आया है, मृत्यु नहीं आई है, तब तक बचे हुए हैं। जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये भी नहीं बचने वाले। अब ये सब बचने वाले नहीं है, पर मेरा भ्रम है कि मैं बचा लूंगा, मैं उपाय भी करता हूँ, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मैं यही उपाय करता हूँ कि कोई स्टोन ऐसा मिल जाएगा जिसके पहनने से बच जाएंगे, कोई मंत्र ऐसा मिल जाएगा जिसके उच्चारण करने से बच जाएंगे, कोई ऐसी प्रक्रिया मिल जाएगी तंत्र वगैरह जिस प्रक्रिया को करने से हम बच जाएंगे। लेकिन कोई भी हमारे लिए इस मरण से बचा नहीं सकता। जो हमारे अपने संगी साथी उनको नहीं बचा सकता, हमें हम स्वयं भी इन सब का आलम्बन लेकर अपने जीवन को बचा नहीं पाल के चलते हैं कि ये सब मेरे लिए शरणभूत हैं, ये मेरी मदद करेंगे। बेचारे उनकी क्या गलती, उनकी अपनी लाइफ साइकिल है, वे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके हमसे जुदा हो जाते हैं और हम ये मानते हैं कि इनने हमारा साथ नहीं दिया, तो वो दे ही नहीं सकते थे, वो उनकी मजबूरी थी। अशरण भावना से हम ये मैसेज लें कि कोई अगर हमें शरण नहीं देता है तो हम गिला शिकवा शिकायत ना करें, क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। माँ अपने बेटे के दुख में दुखी होकर के चाहे तो अपने प्राण दे सकती है, लेकिन उसके दुख को रत्ती भर भी बांट नहीं सकती। ये उस माँ की लिमिटेशंस है, हमारे संबंधों की ये लिमिटेशंस। कोई कितना भी आज्ञाकारी क्यों ना हो हमारा व्यक्ति, वो हमें आखिरी समय पानी और दवाई दे सकता है, हमें सांस नहीं दे सकता, ये उसकी लिमिटेशंस। यहाँ जितनी भी हमने शरण के लिए चीजें ढूंढ रखी हैं, चाहे धन पैसा हो, चाहे हमारे अपने लोग हों, उन सब की सीमा पहचानें और किसी से कोई शिकायत न रखें, और इन सबको अशरण मान करके जो वास्तविक शरण है वो धर्म की शरण है या अपने ही आत्मा की पंच परमेश्वर की शरण है, वो वास्तविक शरण है, वो कभी हमसे नहीं छूटती। ये सब छूटने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको छूटने वाली मान करके मजा लें। ये जब तक साथ में है तब तक इनका आनंद लें, जिस दिन छूट जाएं इनसे दुखी ना हो। ये जो है अशरण अनुप्रेक्षा जो है हमको मैसेज देती है कि यहाँ हम जिस साथी खोजने की कोशिश करते हैं तो यहाँ साथी कोई नहीं, कोई हमारा कहां तक साथ दे सकता उसकी लिमिटेशंस है। जैसे कि हम ट्रेन में यात्रा करते समय किसी को अपना साथी मान लें तो ठीक है, मान सकते हैं दो दिन के लिए, जब तक कि उसका स्टेशन नहीं आया है या मेरा अपना स्टेशन नहीं आया है, तब तक के लिए हम बहुत अच्छे साथी हो सकते हैं। यही मान करके कौन ना यात्रा करेंगे, बहुत अच्छे साथी हैं, दो दिन का हमारा साथ है, उसके बाद हम करेंगे और नीचे उतर जाएंगे, वो उतर जाएगा, मैं पहले उतर जाऊंगा, कोई ना कोई। लेकिन इतनी आसानी से ये विचार बहुत मन में पुख्ता हो, मजबूत हो, तो ही हमारे जीवन में काम आता है, नहीं तो विचार तो आचरण का सबके पास में है। इस तरह अशरण अनुप्रेक्षा को शार्ट में अपन समझ रहे हैं। फिर कहते हैं, चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख लाए लगा रहा है। ठीक ठीक सीधी सीधी बात है कि चारों गतियों में जितने भी जीव हैं वे सब दुखी हैं और पंच परावर्तन करते हैं, द्रव क्षेत्र काल भाव और भाव, ये एक साइकिल है, उसमें ये सब भ्रमण करते रहे हैं। और हमने देख लिया है कि संसार सब प्रकार से असार है, इसमें सुख नहीं है, हो गया प्लेन एक्सप्लेनेशन। तो इतना ही है, अभी तक तो अपन इतना ही करते हैं। जब मैं अनुपेक्षा पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि ये इन्फॉर्मेटरी नॉलेज है, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी संसार के बारे में, आप चाहे जो कुछ सोचते रहो संसार के बारे में, तो ये है कि यहाँ दुख है, पंच परावर्तन है और सब प्रकार से यहाँ पर हमें कुछ मिलता नहीं है, सार नहीं मिलता सिवाय दुख के, कुछ नहीं है इसमें, सुख ना ही लगा रहा, मतलब जरा सा भी सुख इसमें नहीं है। ठीक है, हो गई अनुप्रेक्षा, इतना सा अनुप्रेक्षा नहीं, ये अनुप्रेक्षा हमको मैसेज देती है कि चारों गतियों में कौन दुखी हो रहा है, कौन भ्रमण कर रहा है, मैं स्वयं, किस वजह से, मेरी अपनी अज्ञानता की वजह से, वरना यह संसार मुझे न भटका सकता है, न पंच परावर्तन के साइकिल में मुझे डाल सकता है, और इसमें से भी मैं अगर सार निकालना चाहूं तो सार निकाल सकता हूं। ये असार उनके लिए है, ये असार उनके लिए है जो अज्ञानी है। तो जैसे अपन ने पहली ढाल में किसी से भी पूछ लो, वो कहता है कि पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन है,
किसी से भी पूछ लो आप, छेड़ाला अच्छे अच्छे से मास्टरी वाले लोगों से पूछ लो, वो कहेंगे छेड़ाला की पहली ढाल मतलब चारों गतियों के दुखों का वर्णन। नहीं, चारों गतियों के दुखों का वर्णन अकेला नहीं है, मेरी अपनी अज्ञानता की तरफ इशारा है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको बरमत बाधी, ये चारों गतियों के दुख तुमने कई बार झेले हैं, सो चारों गतियों ने तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया, तुम्हारी अपनी अज्ञानता की वजह से तुमने इसमें दुख भोगे हैं। हम तो तुम्हें इशारा भर कर दे रहे हैं कि चारों गतियों में दुख है, और तुम भले ही भ्रम में उसमें सुख निकालने की कोशिश करते रहे पर मिला तो है ही नहीं तुम्हें, और उसमें सुख मिल सकता था अगर तुम अज्ञानी ना होते तो मिल भी सकता है, क्योंकि उसी मनुष्य गति में बैठ करके केवड़ी भगवान संगी पंचेंद्री होकर के भी और मोक्ष के सुख का शरीर में बैठे हुए भी अनुभव कर लेते हैं। इसलिए गति को बुरा मत कहो, गति की हमारी जो कारण है अज्ञानता है वो हमारे लिए बुरी है। तो संसार में एक ही चीज का विचार करना चाहिए कि संसार में सब कुछ असार है, अगर सार है तो ज्ञान मेरा सार है, मैं अपने अज्ञान की वजह से संसार में से कुछ भी जो है प्राप्त नहीं कर पाता हूं। संसार में अगर सारभूत कोई चीज है तो वो क्या चीज है, वो सारभूत तो मेरा अपना निजी ज्ञान ही सारभूत है, अज्ञान ही यहाँ पर असार है। इतना ही इससे हम मैसेज ले सकते हैं। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरे। इसका सीधा सार तो ये है कि जो भी शुभ और अशुभ कर्मों का फल मिलता है वो सब जिस जीव का बांधा हुआ है उसी जीव के लिए मिलता है। मेरे सुख का उपभोग मैं करूंगा, मेरे दुख की पीड़ा मैं भोगूंगा, मेरे दुख की पीड़ा से दूसरे प्रभावित होकर के दुखी हों तो वो दुख उनका है, मेरा दिया हुआ दुख नहीं है। मेरे सुख से और दूसरे लोग सुखी होकर सुख पावें तो वो सुख भी उनका है, मेरा नहीं है। कोई किसी के सुख और दुख को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, सबको अपने अपने अलग अलग ही भोगना पड़ता है। एक चीज, सुत दारा होए न सीरी, और चाहे पुत्र हो चाहे हमारी अपनी जीवन साथी हो, ये सब भी हमारा साथ नहीं दे पाते हैं, वो इनकी कमी नहीं है। अब इसमें मजा यही है, ये सब मेरा साथ नहीं दे पाते हैं, सब स्वार्थी हैं, तो क्या करूं, उठा करके इन सबको बाहर फेंकाऊं। सीधा मैसेज तो ये मिल रहा है कि भाई ये जब सब स्वार्थी हैं तो इनको हटाओ। कहते हैं इतने से काम नहीं चलने वाला, ये सब स्वार्थ के हैं, हमारे साथ तो हैं, ये जितनी देर हमारे साथ हैं बस वही मान के चलो, ये हमारे सुख दुख को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये हमारे सुख दुख में अपने सुख दुख को मान करके बैठे हैं, या इनके सुख दुख में मैं अपना सुख दुख मान के बैठा हूं, ये मेरी अपनी भ्रांति है। वास्तविकता सिर्फ इतनी है कि वे जितने स्वाधीन हैं उतना ही मैं भी स्वाधीन हूं, मैं अपनी स्वाधीनता को भूल करके परमुखी हो गया हूं या पराश्रित हो गया हूं। मुझे एकत्व भावना स्वाश्रित और स्वाधीन होने का मैसेज देती है कि जब मुझे ही अपना सुख दुख भोगना है तो मैं क्यों दूसरे की मुंह देखूं उस तरफ कि मेरे सुख में ये मदद करेगा और मेरे दुख में ये मदद करेगा, और मैं क्यों दूसरे को इस भ्रम में रखूं कि मैं तुम्हारे सुख और दुख में मदद करूंगा, मैं उसे भी इंडिविजुअल कर दूं और मैं भी अपने आप में स्वतंत्र हूं और रहे सब एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सब एक साथ रह करके भी इस बात के लिए तैयार रहें कि सब अपने अपने में स्वाधीन हैं, क्योंकि अकेले ही हम यहाँ आते हैं, अकेले ही जाते हैं, और बीच के टाइम में हम अपने सुख दुख को भी अकेले ही भोगते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में सुख दुख मान लेना ये हमारा अपना भ्रम हो सकता है, वास्तविकता नहीं है। तो एकत्व अनुपेक्षा हमें सब लोगों को छोड़ छाड़ के और अकेले खड़े हो जाने का संदेश नहीं देती, बल्कि सबके बीच में एक अकेले अपने सुख दुख के लिए तैयार होने और स्वाधीन होने का मैसेज देती है। इसी तरह से अन्यत्व अनुपेक्षा में और एकत्व अनुपेक्षा में ज्यादा फर्क नहीं है। एकत्व अनुपेक्षा पॉजिटिव है, अन्यत्व अनुपेक्षा नेगेटिव अप्रोच है उसी चीज की, कि ये जो मैं हूं मैं स्वाधीन हूं, ये जो अन्य है मेरे से ये मुझे मैं चाहूं तो पराधीन बना देते हैं, वरना ये भी अपने आप में स्वाधीन है, इनकी स्वाधीनता को मैं ना छुई लूं और अपनी स्वाधीनता इनकी वजह से न छीनने दूं, इतना ही पृथक्करण मुझे आवश्यक है। मैं इन पे डिपेंड होकर के अपनी स्वाधीनता कमाता हूं या इन्हें अपने मातहत काम करने के लिए मजबूर करके इनकी स्वाधीनता को मुश्किल में डालता हूँ। मैं इस तरह के दोनों काम न करूँ, इन्हें अलग मानूँ और अपने को अलग मानूँ, ये अन्यत्व अनुपेक्षा है। यहाँ तक कि मेरा शरीर जो मेरे अत्यंत निकट है वो भी मेरा नहीं है, तब फिर अन्य जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं उन सबको भी मैं अपने साथ एक में क्यों करता हूँ? दोनों अलग अलग ही हैं और दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों अपने आप में स्वाधीन हैं। इस ये मैसेज है इसका। सिर्फ ये नहीं है कि ये मेरे से पर हैं इसलिए मैं इनको पर मान के दुत्कार दूं। अपने यहाँ पर किसी भी चीज से राग करने को नहीं कहा, तो द्वेष करने को भी नहीं कहा। अपन ये सोचते हैं कि राग मत करो मतलब द्वेष करो, कोई किसी का नहीं है, सब देख लो संसार हो तो ठीक है भैया, हटा दो सबको तो ये तो द्वेष हो गया। कोई किसी का नहीं है मतलब ये कि सब अपने अपने में स्वाधीन है, उसमें क्या बात है? कोई किसी का हो कैसे सकता है? सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं इसलिए सब अपने अपने हैं और सब सबके हैं, कोई किसी का नहीं। असल में मैसेज ये है कि सब सबके हैं, सब अपने अपने हैं इसलिए कोई किसी का नहीं। लेकिन ये इतनी बात जो है एकदम क्लियर नहीं होती है। ये अन्यत्व अनुपेक्षा इसी तरह का मैसेज देती है। जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। दूध और पानी जब से दूध है तब से मिले हुए हैं, कभी हमने अलग होने का सोचा ही नहीं। इसी तरह शरीर और आत्मा, जब से यहाँ आत्मा है किसी न किसी शरीर के साथ लगी है और हमने कभी इनके अलग अलग होने का विचार ही नहीं किया। अन्यत्व अनुपेक्षा हमें कह रही है कि शरीर की अपनी वास्तविकता है, शरीर की अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसका व्यक्तित्व अलग है, मेरा अपना अलग है, मेरा ज्ञान दर्शन आत्मक अस्तित्व है और उसका रूप रस गंध स्पर्श वाला अस्तित्व है, वो कौद्गलिक है। मैं चेतनात्मक हूँ, लेकिन दोनों एक दूसरे में इतने मिक्सअप हो गए हैं कि मैं एक दूसरे को पे डिपेंड हो गया हूँ। पुद्गल मेरे ऊपर आश्रित हो गया है और मैं पुद्गल के आश्रित हो गया हूँ। मुझे इस अपनी स्वाधीनता को खंडित करने वाली बात से विमुख होना चाहिए, ताकि मैं इनको अलग अलग करूंगा तो मुझे अपनी स्वाधीनता मालूम पड़ जाएगी कि मेरी अपनी स्वाधीनता क्या है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि कोई बैलगाड़ी चली जाती थी, उसके नीचे की छाया में एक बकरी भी चली जाती थी, तो बकरी को कुछ देर के बाद भ्रम हो गया कि ये बैलगाड़ी मेरे ही आश्रित चली जा रही। इसी तरह जो है मेरे शरीर को ये भ्रम हो गया है कि मेरे आश्रित ही ये चेतना चली जा रही है, या कि चेतना को ये है कि भैया मैं जिस दिन मेरा शरीर नहीं रहेगा उस दिन मैं अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी, मैं मर जाऊंगी। चेतना को ऐसा लगता है शरीर के मरने से अपना मरने का भान होने लगता। तो कहते नहीं, दोनों अलग अलग हैं, कोई किसी से प्रभावित हो सकता है लेकिन कोई किसी रूप नहीं हो सकता, इतना सा जो है। तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों हुए मिल एक सुत रामा। इसी प्रकार से जो हमारे और धन धान इत्यादि जो हमसे पर पदार्थ हैं वे भी हमसे पृथक हैं, वे कैसे हमारे एक हो सकते हैं? ये हमारा भ्रम है। हम उनको उनके स्वरूप को पहचानकर अपने स्वरूप से पृथक माने और अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए कोई प्रयत्न करें, यही अन्यत्व अनुपेक्षा की का मैसेज है। इसके बाद एक और करते हैं बस। पल रुधिर राग मल थैली, की कस वसादिते मैली, नवधार वह घिनकारी, अस देह करें किमियारी। हमने जो हमारा शरीर है इसके बारे में आपको बता दिया कि ये कैसा है। पल मतलब होता है पीप वगैरह, रुधिर राग, रात का मतलब लिया है, रात का मतलब पीप लिया और पल का मतलब मांस लिया है, और रुधिर तो रक्त ही। इन सब से जो थैली का मतलब इन ये सब चीजें इसमें रखी हुई हैं कहना चाहिए, हाँ कंटेनर है वो उसका। गीकस वसादी थे मेली, और हड्डी चर्बी इत्यादि से ये अपवित्र है, बड़ी घृणास्पद है। ये बहुत अच्छा लगता कहने में, हाँ, तो कह तो लेंगे अपन कि ये बड़ी घृणास्पद है और इसमें से 9 द्वार हैं जिनसे कि सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं निकलता है, इसलिए मुझे इस देश देह से प्रेम नहीं करना चाहिए। अच्छी बात, और तो कोई विशेष बात नहीं है इसमें तो। लेकिन अब हम इसमें से विशेष बात हमें मैसेज दे रही है ये कि ये शरीर ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है, आप इसके स्वभाव को समझिएगा तब फिर क्या करिएगा। जब ये ऐसा है तो इसको पवित्र बनाने का उपाय करिएगा, इसकी अपवित्रता से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, ना इसकी अपवित्रता के बावजूद भी इससे राग करने की आवश्यकता है, इसकी अपवित्रता का लाभ लेने की आवश्यकता है। ये अपवित्र है, स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र दे, बड़ा सीधा सा उपाय है कि स्वभाव तो इसका मैं मान लिया कि ये अपवित्र है, लेकिन अगर इसमें रत्नत्रय की स्थापना कर दी जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त कर लूं तो ये पवित्र हो जाती है, इतनी खराब नहीं है ये। इसमें ही रत्नत्रय की आराधना होती है। इसलिए इस देह में राग ना करके मैं इसके आश्रित अगर रत्नत्रय की आराधना करूं और गुण प्रीतिर मता, और अगर मैं रत्नत्रय में प्रीति करूं तो इस देह का प्राप्त होना भी मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। देह एक तरह मुझे जहां अपने अपवित्र होने का ध्यान दिलाती है, वहीं पर देह मुझे संदेश देती है कि अगर मेरा सदुपयोग कर लोगे तो जैसे काना पौड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय रोवे। दोनों स्थितियां हैं कि है तो वैसे ये बाड़र या कि जड़ गन्ने की, जिसको अगर चूसो तो दांत वांत टूट जाते हैं और रस कुछ मिलता नहीं है, तो उससे बेहतर है कि उसके पीस बना करके और अगर बो दो तो बहुत सारे सारे रस युक्त गन्ने प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह ये देह है, इसमें सिवाय अपवित्रता की कुछ नहीं है। मैं इस देह को पवित्र बनाने की कोशिश करता हूँ तो देह तो पवित्र हो नहीं सकती, लेकिन देह में अगर रत्नत्रय की स्थापना कर लूं तो ये देह भी पूज हो जाती है। अपन तो पूजते तो है, आचार्य उपाध्याय और साधु भी देह को पूजते हैं, क्यों? उसमें रत्नत्रय है इसलिए हम उसको पूजते हैं। वैसे तो उनकी देह और हमारी देह में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, जितना मलमूत्र उनकी देह में है सो हमारी देह में है, वो तो जो की त्यों पवित्र है। कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि देह पवित्र हो गई हो। तो मैं देह को पवित्र ना मान करके उसमें पवित्र अपनी पवित्रता का विचार करूं। अशुचि अनुप्रेक्षा मुझे अपनी पवित्रता का स्मरण करा देती है कि इस अपवित्र देह में भी जो मैं बैठा हूं वो अपनी पवित्रताओं का ध्यान रखूं और मैं निरंतर इसे पवित्र ना बना करके अपने को पवित्र बनाऊं। मैं शरीर की मलिनता से जितना घबराता हूं उतने आत्मा की मलिनता से क्यों नहीं घबराता हूं? मैं जितना शरीर की संभाल में अपना समय व्यर्थ करता हूं उतना अगर अपने आत्मा के परिणामों की संभाल में समय गुजारूं तो ये शरीर भी मुझे और कुछ ना कुछ इस जीवन में दे सकता है। इतना ही इस अनुपेक्षा।
चार फरवरी मुंगावली आगे का प्रवचन शुरू होता है।
बारह भावना में सातवीं भावना आश्रव। आश्रव का मतलब होता है आत्मा में कर्मों का आना, और कर्मों के आने का द्वार ही आश्रव कहलाता है। और तत्पार सूत्र में इसी बात के लिए लिखा है कि काय वांग मनः कर्मयोगः सा आश्रव। मन वचन काय इनकी क्रिया का नाम ही योग है और वही आश्रव है। यही बात छह ढालाकार ने लिखी है कि जो योगन की चपलाई ताते वह आश्रव है। जो मन वचन काय के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेश का परिस्पंदन है, चपलता है, उसके द्वारा निरंतर कर्म आते रहते हैं आत्मा में। वे कर्म दोनों प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो हमारे मन वचन काय की जो शुभ क्रिया है उसके द्वारा तो शुभ कर्मों का आश्रय होता, और जो मन वचन काय की अशुभ क्रिया है उसके द्वारा अशुभ का आश्रय होता है। हमें दोनों जानना चाहिए। कर्म आश्रव की अपेक्षा से तो हमारे लिए दोनों ही अहितकर हैं, लेकिन शुभ कर्म अशुभ की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। इसलिए जब जीव के निरंतर आश्रव चल रहा है तब उसे इस बात का विचार करना चाहिए कि जब आश्रव निरंतर चल रहा है, मेरे मन वचन काय की कोई भी क्रिया तो मैं करूंगा ही, तब मुझे अशुभ क्रिया से बचना चाहिए और शुभ क्रिया करना चाहिए ताकि शुभ का आश्रव अधिक हो और अशुभ का आश्रव ना हो। आश्रव का कारण और क्या है? तो एक जगह पर लिखा हुआ है कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओं सर्वस लूटे सुध। मोह नींद की वजह से, जैसे कि किसी व्यक्ति के घर में चोर क्यों आते हैं? अगर वो सो रहा हो तो घुसाते हैं। इसी तरह हम जो है मन वचन काय की क्रिया के द्वारा सो ही तो जाते हैं। मन वचन काय की जो भी क्रिया है वो हमारे आत्मा से विमुख होने पर ही होती है, वो ही हमारी निद्रा है, वो मोह से प्रेरित है। तो कहते हैं कि मोह रूपी निद्रा ये हमारे लिए आश्रव का कारण बनती है, और आश्रव तो एक जो है वो प्रवाह है। अब उस प्रवाह को पर कैसे अंकुश लगाएं, ये बात की बात है, पर उस प्रवाह को जान करके क्यों जानना आवश्यक है आश्रव को? तो कहते हैं आश्रव को जानना इसलिए आवश्यक है ताकि हम उस पर रोक लगा सके।
या कि हम उसे कोई दिशा दे सके। अगर नहीं रोक पाते हैं तो कम से कम उसको एक दिशा तो दी जा सकती, शुभ रूप भी उसे किया जा सकता, अशुभ भी किया जा सकता। एक चीज और है कि जिन क्षणों में हम शुभ मन वचन काय नहीं रखते हैं उन क्षणों में मन वचन काय अशुभ ही रहता है, और कोई उपाय ही नहीं। इसलिए आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक शुभ मन वचन काय को ही बना के रखें। मन से अच्छा विचार करना, वाणी से श्रेष्ठ वचन बोलना, हितमित प्रिय वचन बोलना और शरीर से धार्मिक क्रियाएं करना, यही मन वचन काय का शुभ होना है। तो इस प्रकार ये विचार भी करना कि आश्रव का जो अंतहीन प्रवाह है उस प्रवाह से क्या बचने का कोई उपाय है, या कि ये निरंतर चलता रहेगा। ये इसमें आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तह तिन्ह निर्वेर, और उसी के साथ हमें ये भी भावना भानी चाहिए कि आश्रव तो हमेशा दुख देने वाला ही है। जो बुद्धिमान है या मेरी बुद्धिमानी इसमें है कि मैं इससे बचूं, ये आश्रव का बार बार चिंतन करना, क्योंकि आश्रव तो निरंतर हो रहा है।
महाराज जी, ये उसी समय तक हो सकता है जब तक निर्विकल्प समाधि में आदमी न जाए?
नहीं,
उस समय भी आश्रव होगा,
प्रति समय आश्रव होता। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की अवस्था में भी साता वेदनी का आश्रव हो रहा है। आश्रव तो सिर्फ रुकता है 14वें गुण स्थान। 13वें गुण स्थान में जब तक योग है, संयोग केवली महाराज हैं, तब तक आश्रव होगा। अब रही बात ये कि एक आश्रव होता है जिसको सांप्रदायिक आश्रव बोलते हैं, जो कषाय सहित होता है, उसमें ड्यूरेशन भी है, पोटेंशियलिटी भी है, लेकिन उसके बाद जो इरियापद आश्रव होता है उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं होता, सिर्फ कर्म आते हैं और निकल जाते हैं। यह भी एक प्रकार का आश्रव, वो इरियापद आश्रव, वो बाद को होता है। पर जब तक मुंह है जीव के तब तक
होता रहेगा,
तब तक आश्रव
माने मन की क्रिया होती रहेगी, चाहे हमको नहीं मालूम पड़े, पर वो क्रिया,
वो परिस्पंदन तो होता रहेगा आत्मा का। हम अपने बुद्धिपूर्वक करें, इंटेंशनली करें या कि ना करें, कर्म के उदय से निरंतर एक विचार भीतर सतत प्रक्रिया चलती रहती, हमारा प्रयत्न निरंतर चलता रहता। मन का प्रयत्न, वचन का प्रयत्न और शरीर का प्रयत्न, ये कभी खत्म ही नहीं होता जब तक ये तीनों अपने पास हैं। एक इंद्रिय जीव का क्या शरीर का प्रयत्न दिखाई ही नहीं पड़ता, लेकिन होता है वहां पर। इसी तरह से दो इंद्रिय जीव से वचन शुरू हो जाते पर उनका वचन का प्रयत्न दिखाई ही नहीं पड़ता, पर होता है। अपन भी जब चुपचाप बैठे हैं, कोई वचन नहीं बोल रहे हैं, तब भी बोलने का जो विकल्प है वो विकल्प तो निरंतर वाणी का परिस्पंदन करवाता रहता है उसके माध्यम से। इसलिए इन्होंने परिस्पंदन लिखा है, मन वचन काय की क्रिया नहीं, मन वचन काय की क्रिया से होने वाला जो आत्म प्रदेश परिस्पंदन है वो आश्रव का कारण है। तो यहां आश्रव भावना में कितनी बातें विचारनी है। पहली बात, आश्रव का प्रवाह अंतहीन है, क्या मैं उसे कोई दिशा दे सकता हूं या उसे रोक सकता हूं, एक बात। आश्रव को दिशा देने का अर्थ है उसे शुभ बनाना, उसे अशुभ से बचा लेना। वैसे देखा जाए तो आश्रव चाहे शुभ हो या अशुभ हो, मेरे अंदर दोनों ही मुझे संसार में रोकने वाले हैं, पर शुभ आश्रव बेहतर है अशुभ की अपेक्षा से। और ये मन वचन काय की क्रिया के माध्यम से निरंतर होता रहता है, और आश्रव दुख देने वाला, इतनी बात का यहां पर विचार करना चाहिए। इसके बाद अब आता है संवरण। अनुप्रेक्षा एक्चुअली भावात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, वो अपने को ध्यान में रखना। हाँ, एक भावात्मक परिवर्तन होना चाहिए। हम आश्रव का विचार कर रहे हैं तो ठीक है, आश्रव का विचार कर लिया, जितना जितना लिखा था, नहीं, उससे मेरे अंदर एक निरंतर प्रक्रिया होने से जो परिवर्तन घटित होता है कि मैं आश्रव से बचने के लिए तत्पर हो जाता हूँ, तब वो आश्रव भावना श्रेष्ठ मानी जाएगी। और ऐसे आश्रव भावना कर ली, चिंतन कर लिया, लेकिन भावात्मक रूप से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर वो अनुप्रेक्षा नहीं कहलाएगी। इसलिए अनुप्रेक्षा बिल्कुल भावात्मक प्रक्रिया है और हमारे संकल्प को मजबूत करने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका हमें विशेष ध्यान रखना। अब जो है संवर, तो संवर का मतलब ये है कि आत्मा में आने वाले पुण्य और पाप के आश्रव को रोक देना, ये संवर कहलाता है। या कि सभी प्रकार के कर्मों का रुक जाना, ये भी आश्रव कहलाता है।
जैसे बहते हुए पानी की धारा को हमने एक दिशा दे दी, फिर उसके बाद उसको रोक दिया, इसी तरह की प्रक्रिया इसमें भी है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। जब भी हम कोई शुभ और अशुभ क्रिया करेंगे तब उसके द्वारा आश्रय तो होगा। जिन क्षणों में हम शुभ और अशुभ समस्त क्रियाओं को छोड़ करके और अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं, उन क्षणों में हम आश्रय को रोक देते हैं, वही तो संवर्गी। इसलिए कह रहे हैं कि जिन क्षणों में हम आत्मा का अनुभव करते हैं या आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं, वे क्षण हमारे संवर के हैं। अब इसमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन को कि विभिन्न भूमिकाओं में कर्मों के आश्रय अलग अलग अवस्था में रुकते हैं। जैसे एक सम्यक दृष्टि है, उसे जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसके 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता, वे नहीं आती है उसके। ऐसा ही पूर्णतः संवर की स्थिति तो बहुत ऊंची अवस्था में जाके बनती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को क्यों संवर की बात कही जा रही, ताकि वो अपने कुछ कर्मों को तो रोक सके। समस्त कर्मों को रोकने का नाम तो है संवर, लेकिन जितने जितने रुकते चले जाएं, हम भावना तो भाए कि इन कर्मों को मैं जो आ रहे हैं कितने कर्मों को मैं रोक सकता हूँ, और जितनी देर मैं आत्मा का ध्यान करूंगा उतनी देर तो रोक ही लूंगा, क्योंकि आत्मा के ध्यान करने से ही और शुभ अशुभ सभी कर्म,
नए कर्म बंद नहीं होगा महाराज जी,
नया कर्म बंद नहीं होगा। और संवर के साथ एक चीज और है कि नया कर्म बंद जिन कारणों से हम संवर करते हैं, व्रत समिति गुप्ति इत्यादि के द्वारा जो हम संवर करते हैं, और उधर आश्रय हम कर रहे थे मिथ्या तवृति प्रमाद और कषाय के द्वारा, तो हमने उनको छोड़ दिया, और व्रत नियम संयम गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा वगैरह के द्वारा जो हम संवर की शुरुआत करते हैं, वो दो काम एक साथ होता है कि संवर के साथ शुभ कर्मों का बंद भी होता है और अशुभ कर्मों की निर्जरा भी होती है। अशुभ कर्मों का आना भी रुकता है, अशुभ कर्मों की निर्जरा भी होती है, और शुभ कर्मों का भी संचय होना शुरू होता है एक साथ जो है संवर के साथ ये प्रक्रिया। लेकिन हमारा मंतव्य वहां यहाँ ये नहीं है, यहाँ हमें चूंकि संवर भावना करनी है, इसलिए हम सिर्फ ये विचार कर रहे हैं कि संवर कैसा है। संवर हमारे लिए हितकारी है पहली बात, और कब होता है ये संवर, जब मैं आत्मा की तरफ जितनी देर रहूंगा उतनी देर ही मैं संवर कर पाऊंगा। इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा समय आत्मस्थ रहना चाहिए, और पाप और पुण्य दोनों क्रियाओं में सबसे पहले तो पाप से बचना चाहिए, फिर उसके बाद जो है पुण्य क्रिया से बचने की आवश्यकता नहीं होती, आत्मस्थ हो जाने पर पुण्य से हम अपने आप बच जाते हैं। तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अब लोके। आश्रय मेरे लिए दुख का कारण था, संवर मेरे लिए सुख का कारण। स्मय न्यून अनत्यति हो गया, बस एक हो गया,
एक नहीं कौन सुनाएंगे, बस हम समझ लेंगे। तो
संवर का अर्थ ये नहीं है कि मैं सर्वथा प्रवृत्ति शून्य होकर के निष्क्रिय होके बैठ जाऊं तो संवर हो जाएगा, नहीं। संवर का अर्थ है प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच एक समायोजन करना, ठीक ठीक प्रवृत्ति करना और जितनी आवश्यक है उतनी करना, बाकी निवृत्त हो जाना। तो अपना पूरा जो धर्म है वो निवृत्ति मूलक है, संवर निवृत्ति मूलक है। जब हम असमीचीन प्रवृत्ति का निषेध कर देते हैं तो हम उससे निवृत्त हो जाते हैं। हम शुभ प्रवृत्ति, जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं कि मैं नहीं बोलूं, एक तो ये है, और मैं हितमित प्रिय बोलूं, तब भी मेरा नहीं बोलने जैसा ही काम है, उसमें भी निवृत्ति है, क्योंकि मैंने पाप वचन नहीं बोले हैं, हितमित प्रिय बोला है, प्रवृत्ति भी की है तो अशुभ से बच करके की है, इसलिए वह प्रवृत्ति भी जो है संवर का कारण बनती। निवृत्ति तो संवर का कारण है ही, लेकिन प्रवृत्ति भी संवर का कारण बन जाती है। इसलिए संवर का अर्थ इतना ही नहीं है कि सर्वथा प्रवृत्ति शून्य होकर के कोई बैठा है प्रवृत्ति भी। एक चीज दूसरी बात और ये आपने को ध्यान में रखने की है कि संवर कब होगा, जबकि मैं कर्मों के फल में समता रखूंगा तभी संवर होगा। अर्थात नए कर्म बंधने की प्रक्रिया कब चलती है, जबकि मैं कर्म के उदय में संक्लेश या कि अहंकार कर लेता, तब नए कर्मों का आश्रय होता है।
मैं संवर करने के लिए फर्ज मेरा ये है कि जो कर्म का उदय आए उसमें अधिक से अधिक मैं समता रखूं, हर्ष और विषाद दोनों ना करूं, तब मुझे संवर होगा, ये मुझे विचार करना चाहिए जबकि जबकि मैं संवर अनुप्रेक्षा कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि ऋण तभी चुकता है जब आय से व्यय कम हो। संवर भावना हमें इस बात के लिए इशारा करती है कि हम अपने अंदर कर्मों का संचय अगर अधिक करते रहेंगे और निर्जरा हमारी कम होगी तो संचित द्रव्य अधिक हो जाने से हमारा संसार कभी नष्ट नहीं होगा। संवर हमें इस बात की सलाह देता है कि आने वाले कर्मों का रेश्यो और जाने वाले कर्मों का रेश्यो जो है वो प्रॉपर हो, आने वाले कम आए और जाने का क्रम ज्यादा हो, संवर इस बात के लिए इशारा करता है। इस प्रकार ये संवर अनुप्रेक्षा जो है वो हमारे संचय को कम करने की बात सिखाती है। सामान्य व्यवहार में भी देख लीजिएगा कि जितना कम संचय करेंगे, इसी तरह कर्मों के क्षेत्र में भी कि हम संचय कम करेंगे, तो संवर सीधा सीधा संचय को कम करने की प्रक्रिया है। इस तरह संवर भावना हुई। निर्जरा भावना के बारे में दौलत राम जी लिख रहे हैं कि निज काल पाय विधि झरना तासो निज काज न सरना। कर्मों का क्रम क्रम से आत्मा से अलग हो जाना ये निर्जरा कहलाती है। दो प्रक्रियाएं निर्जरा के साथ होती हैं। एक तो कर्म अपना समय पूरा होने पर फल देकर के आपो आप नष्ट हो जाते हैं, वह सविपाक निर्जरा कहलाती है। तो कह रहे हैं कि निज काल पाए विधि झरना, विधि मतलब कर्म, अपना समय पाकर के अपना फल देकर के कर्मों का खिर जाना, इससे हमारा काम पूरा नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम उन कर्मों को जो हमारे साथ बंधे हुए हैं निर्जरित करना चाहें तपस्या के माध्यम से समय से पहले, तो हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे, हमारा डीके फास्ट होगा। तो वही बात इसमें हमें दोनों चीजें जानना चाहिए निर्जरा के बारे में कि कर्म अपना फल दे करके स्वयं नष्ट हो जाता है, वह भी एक निर्जरा है, वो तो प्राणी मात्र के लिए निरंतर चलती रहती है। मुझे यहाँ पर जिस निर्जरा की भावना भानी है वो तब से होने वाली निर्जरा है जिससे कि मेरा संचित द्रव्य समय से पहले मैं उसे नष्ट कर सकूं। ये आवश्यक है। जिन माध्यमों से संवर होता उनसे निर्जरा तो होती ही है, लेकिन तप के द्वारा विशेष